इप्सिता अवंतिका के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उठकर खड़ी हुई और बात बदलते हुए अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, कभी आपने बीच की रेत पर नंगे पांव चलकर देखा है? अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाकर ना कहा। इप्सिता ने झुककर अपनी सैंडल उतारी और अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, हाँ पता था, हमें तो किया होगा, इसीलिए अभी हमारे साथ एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत रिलीफ मिलता है। रेत की हल्की गर्माहट जब पैरों पर लगती है तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, एक बार ट्राई करके देखिए। इतना कहते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु एकदम उसके चेहरे की ओर ही देखने लगा। वो काफी खुश लग रही थी और उसे खुश देखकर अभिमन्यु को भी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि इप्सिता को हमेशा इस तरह खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और हमेशा उसे ऐसे खुश मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए ना कहा, नहीं हमें आदत नहीं है, हमें नहीं लगता हमारा ये ट्राई करना सही होगा, एक्चुअली हमें नंगे पैर चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इप्सिता ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, एक बार हमारे कहने पर ट्राई तो करिए। इप्सिता के दोबारा कहने पर अभिमन्यु भी मना नहीं कर पाया और अपने जूते और मोजे उतारने लगा। उसके बाद अभिमन्यु ने गर्म रेत पर अपना पैर रखा और सच में उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने इप्सिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो सच में काफी रिलैक्सिंग है। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, उठिए। उसने अभिमन्यु को खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर वहीं रेत पर चलने लगी। इप्सिता ने ये सब कुछ पहले से नहीं सोचा था, लेकिन अभी वो बस अवंतिका का विषय खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने अभिमन्यु को इस तरह रेत पर चलने के लिए कहा। अभिमन्यु भी बिना कुछ कहे चुपचाप इप्सिता का हाथ पकड़कर उस रेत पर चल रहा था। तभी इप्सिता ने अपने मन में सोचा, पता नहीं क्यों हमें अवंतिका के नाम से इतनी चिढ़ हो रही है, आज से पहले तक तो हम किसी का भी नाम सुनकर इस तरह से नहीं चिढ़ते थे, तो फिर जब अभिमन्यु अवंतिका का नाम लेते हैं तो हमें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। इप्सिता के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर देखकर अपने मन में सोचा, शायद इप्सिता अभी भी अवंतिका के बारे में ही सोच रही है, हमें उनसे अवंतिका के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिमन्यु को भी ये बात समझ आ रही थी। तभी उसने इप्सिता की ओर देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे ही इप्सिता ने देखा कि अभिमन्यु उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा रहा है तो वो हैरानी से अभिमन्यु की ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप आइसक्रीम खाएंगी? इप्सिता ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर आपका मन है तो आप ले आइए। क्यों, आपका मन नहीं है क्या? अभिमन्यु ने पूछा। इप्सिता ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं वो बस हमने सोचा नहीं था आइसक्रीम खाने के बारे में। अभिमन्यु ने इप्सिता को वहीं बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है आप वापस जाकर बेंच पर बैठिए, हम अभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो बेंच की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो अकेला वहाँ पानी में उछल रहा था। तभी उसे एक छोटी सी मछली दिखी जो शायद लहर से बहते हुए किनारे पर आ गई थी। उसने उस छोटी सी मछली को उठाते हुए कहा, वाह ये तो कितनी प्यारी सी फिश है। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वहाँ पर एक और मछली थी। उस छोटे से बच्चे ने उस मछली को भी उठा लिया। इप्सिता उसे इस तरह मछलियाँ इकट्ठा करते मुस्कुराने लगी। तभी पानी की एक तेज लहर आई और वो बच्चा पानी में गिर गया। इप्सिता उस बच्चे को ही देख रही थी कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बच्चा पानी में डूबने लगा। इप्सिता ने आसपास देखा लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इप्सिता जल्दी से भागते हुए उस बच्चे की ओर गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ पर, उस बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। वो बच्चा पानी की लहर के साथ और अंदर की ओर डूबता जा रहा था। इप्सिता ने देखा कि किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी तो वो खुद ही पानी के अंदर उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तभी इप्सिता ने सोचा, हमें तो तैरना नहीं आता, अगर इस बच्चे को बचाने में हम ही डूब गए तो। इप्सिता इतना सोचकर एक पल के लिए रुकी और उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी इप्सिता ने बिना कुछ सोचे समझे पानी के अंदर छलांग लगाई। वो उस बच्चे को पकड़ने लगी। वो बच्चा पानी में डूब रहा था। इप्सिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा पानी में सांस न लेने की वजह से शायद बेहोश हो गया था, उसके फेफड़ों में पानी भर गया था और वो सब लोग बच्चे को लेकर जल्दी से सूखी जगह पर चले गए। इप्सिता पानी से बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक तेज लहर आई और इप्सिता पानी के अंदर काफी गहराई में चली गई। इप्सिता ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हेल्प, कोई है यहाँ पर? तभी अभिमन्यु की नजर इप्सिता पर पड़ी जो लगभग पानी में डूबने वाली थी। अभिमन्यु आइसक्रीम लेकर लौट रहा था और जैसे ही उसने इप्सिता को पानी में डूबते हुए देखा, अभिमन्यु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एकदम घबरा गया। उसने आइसक्रीम वहीं फेंक दी और वो इप्सिता को बचाने के लिए सीधे पानी के अंदर चला गया। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को आते हुए देखा, उसने अपना हाथ तेजी से अभिमन्यु की ओर बढ़ाया। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और वो तैरता हुआ किनारे पर आया। इप्सिता की सांस काफी तेज हो गई थी। इप्सिता ने अपने मुंह पर से बाल हटाए। इप्सिता के पूरे बाल और कपड़े पानी में भीग गए थे। उसे सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता की पीठ पर अपना हाथ रखकर धीरे से उसकी पीठ सहलाई। अभिमन्यु ने घबराते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो भी अभिमन्यु की ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा किया। इप्सिता काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो उठकर खड़ी हुई तभी वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे संभाला और इप्सिता को अपनी गोद में उठाकर उसे सीधे बेंच पर ले आया। उसने इप्सिता के कपड़े देखे, वे पूरे भीग गए थे। अभिमन्यु ने अपना कोट उतारकर इप्सिता के कंधों पर डालते हुए गुस्से से कहा, इप्सिता आप पागल हैं क्या? आपको जब तैरना नहीं आता तो फिर आप पानी में क्यों गई? इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, वो बच्चा डूब रहा था, अगर हम उसे बचाने नहीं जाते तो शायद वो मर जाता। इप्सिता इतना बोलकर चुप हुई। अभिमन्यु ने इप्सिता को डांटते हुए कहा, लेकिन आपको तैरना नहीं आता ना, तो आप इस तरह से किसी को बचाने कैसे जा सकती हैं, वो भी इतने गहरे पानी में? अभी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारा मतलब है कि हम आपके माँ बाप को क्या जवाब देते? इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे की ओर देखा, वो अभी भी काफी गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाकर दबी हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि हम एक लहर से इतनी गहराई में चले जाएंगे और हम अपने सामने उस छोटे से बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमें पानी में जाना पड़ा। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा, कोई दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता है? ये लड़की बिल्कुल पागल है। अभिमन्यु इप्सिता को देखकर ये बात अपने मन में सोच ही रहा था कि इप्सिता ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और देखा कि अभिमन्यु उसे घूर कर देख रहा है, तो इप्सिता को लगा कि शायद वो उसे फिर से डांटने वाला है। इसीलिए इप्सिता ने पहले ही माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमने बोला ना आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, आप प्लीज हमें ऐसे घूर कर देखना बंद करिए, हमें डर लग रहा है।
इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए अब हम जल्दी घर वापस चलते हैं वरना आपको ठंड लग जाएगी। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो झुककर अपनी सैंडल उठाने लगी। उसने अभिमन्यु से और कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कार के पास आई और कार का दरवाज़ा खोलकर कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में इप्सिता और अभिमन्यु घर पहुंचे। इप्सिता तुरंत घर के अंदर आई। इप्सिता के गीले कपड़ों की वजह से उसे हल्की ठंड लग रही थी। जैसे ही इप्सिता घर के अंदर पहुंची, उसे एक तेज छींक आई। उसे इस तरह छींकते देखकर अभिमन्यु ने पूछा, आपको सर्दी हो गई क्या? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो बस छोटी सी छींक थी, हम चेंज कर लेते हैं। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इप्सिता तुरंत अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। अभिमन्यु भी अपने कमरे में गया क्योंकि उसके कपड़े भी गीले थे। इप्सिता ने कपड़े बदले लेकिन उसे ठंड लग रही थी। इप्सिता तेज आवाज में छींकी। उसने टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक पोंछी। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु शायद ठीक कह रहे थे, हमें सर्दी हो गई है। इप्सिता इतना बोलकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तभी इप्सिता का फोन बजा। उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसमें उदय की कॉल आ रही थी। इप्सिता ने जल्दी से कॉल रिसीव की और खुश होते हुए बोली, उदय भाई कैसे हैं आप? उदयवीर ने इप्सिता की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी इशी कैसी है? आप और आज तो हमारी इशी के एग्जाम खत्म हो गए हैं ना? इप्सिता ने उदय की बात सुनकर जवाब दिया, हाँ भाई एग्जाम खत्म हो गए हैं। इप्सिता इतना ही बोली थी कि उसे फिर से छींक आ गई। इप्सिता के छींकने की आवाज़ सुनकर उदय ने कहा, क्या बात है, आपको जुकाम हुआ है क्या ऐशी, कुछ ठंडा खाया आपने? इप्सिता ने उदय को समझाते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हमने कुछ ठंडा नहीं खाया है, हम एक्चुअली पानी में थोड़ा भीग गए थे, इस वजह से शायद थोड़ी ठंड लग गई है। उदय ने पूछा, कैसे भीग गई, वहां पर बारिश हो रही थी क्या? इप्सिता ने अपने मन में सोचा, ये उदय भाई भी कितने सवाल करते हैं, अब हम इन्हें ये तो नहीं बता सकते कि हम खुद ही जाकर पानी में कूद गए थे जिसकी वजह से हमें सर्दी हो गई, क्योंकि अगर हमने ये बताया तो भाई और ज्यादा फिक्र करेंगे। इप्सिता ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो दूसरी तरफ से उदय की आवाज़ आई, क्या हुआ ऐशी, आप हमारी बात सुन रही हैं ना? इप्सिता ने बात संभालते हुए जवाब दिया, हाँ भाई हम सुन रहे हैं, और वो बस थोड़ा सा ही भीगे थे, आप फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। उदय ने भी फिर आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ध्यान रखो, और थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, आराम मिलेगा इससे। इप्सिता ने भी उसकी बात सुनकर कहा, जी भाई हम पी लेंगे। वैसे आप बताइए, आपने हमें कॉल क्यों किया था? क्रमशः है।